थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों और परिवार के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल का अंतिम पुस्तक है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन एक बार फिर से कर सकें। आज जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से फिर से अध्ययन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब वे आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनते हैं तो आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए ताकि इन भविष्य की बातों को वे समझ सकें, ग्रहण कर सकें और आप में बढ़ने पाएं। हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए जो निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, दबाव में हैं, पिताजी आप उन्हें भी अपनी शांति और आशीष प्रदान करें। आज के वचन के द्वारा हम सबसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम सब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए अध्याय 14 से अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पूर्व हम ये जानना चाहेंगे कि यूहन्ना, जो इस पुस्तक का लेखक है, हमें और कुछ क्या बताना चाहता है। देखते हैं कि यूहन्ना समुद्र के किनारे खड़ा था और उसने दर्शन में देखा कि फिर एक पशु समुद्र से निकला जिसे अजगर ने संपूर्ण अधिकार दे दिया और उसने परमेश्वर के चुने हुओं को सताना आरंभ कर दिया। इसके बाद यूहन्ना अपने दर्शन में देखता है कि पृथ्वी में से एक और पशु निकला जो मसीह की नकल करता था, परंतु मनुष्य को घृणित वस्तु पशु की मूरत की उपासना करने के लिए प्रेरित करता था और मनुष्य उसकी पूजा भी करने लगे क्योंकि वह मूरत बोलती थी। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए आज अध्याय 14 से अध्ययन को आरंभ करेंगे, जिसका विषय है महाक्लेश के अंत का दर्शन। इस अध्याय में अनेक घटनाएं हैं। यह एक मध्य वार्ता का अंतराल है जिसमें हम मेमने को सियोन पर्वत पर देखते हैं और अनंत सुसमाचार की घोषणा सुनते हैं। बेबीलोन और पशु का चिन्ह ग्रहण करने वालों पर दंड की घोषणा भी की जाती है और प्रभु यीशु के नाम के लिए मरने वालों की स्तुति की गई है। तदुपरांत हर्मगिदोन की घाटी में होने वाले महायुद्ध का पूर्व प्रदर्शन भी देखने को हमें मिलता है। मेरे मित्रों, इस अध्याय में 7 नायकों के क्रम में भंग है। यह तो स्पष्ट है कि इस अंतराल को 7वें और 6वें नायकों के मध्य नहीं रखा जा सकता है। ये दो नायक वन पशु हैं। निसंदेह उन्हें दो जुड़वा बच्चों के समान साथ ही रखना है, उनके मध्य का क्रम टूटना नहीं चाहिए। अतः यह अध्याय 7वें नायक के आगे की कार्यवाही है जो पुस्तक के क्रम में है। यह दर्शनों का उल्टा पुल्टा वर्णन नहीं है, वरन इसमें तर्क, समय का क्रम और गणित का क्रम है। इस अध्याय में हम देखते हैं उन 7 नायकों के अतिरिक्त अन्य नायक भी हैं, जिससे कि हमें पिछले 2 अध्यायों में व्यक्त दर्शनीय घटनाओं का संपूर्ण परिदृश्य दिखाई दे। जैसा हम देख चुके हैं कि यह गहन अंधकार का समय है, वरन इतिहास में सबसे अधिक भयानक समय है। यह वास्तव में नरक का अवकाश दिवस है। कोई भी सोचने वाला व्यक्ति एक प्रश्न अवश्य पूछेगा, इस युग में परमेश्वर की प्रजा ने कैसे निर्वाह किया होगा? क्या वे अंत तक इन असाध्य प्रतिकूल परिस्थितियों में अंत तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य ठहरे? इस प्रश्न का उत्तर इस अध्याय में है। 144,000 भेड़ों के चरवाहे को अब पहचाना गया है। यहां ध्यान दीजिए कि उसके पास 149,999 भेड़ें नहीं, पूरी 144,000 भेड़े हैं। उसने एक भी भेड़ को नहीं खोया है। उसने उनका उद्धार किया है, उन पर मुहर लगाई है और उन्हें सुरक्षित रखा है, क्योंकि वह भेड़ों का महान चरवाहा है। ये भेड़ें हमारे झुंड से अलग दूसरे झुंड की भेड़े हैं और अच्छे चरवाहे ने उन्हें महाक्लेश से सुरक्षित निकाला है। इस अध्याय के आरंभ में हमारे सामने यह दृश्य उभरता है और यह जानना वास्तव में उत्साह की बात है कि मेमना पशु नहीं, अंतिम निर्णय सुनाएगा। यह वह मेमना नहीं है जो अजगर के समान बोलता है, वह प्रभु यीशु स्वयं है, क्योंकि उसका निर्णय अंतिम है। इसलिए बेबीलोन, जो एक महान राजनीतिक राजधानी होगी, एक महान व्यापारिक केंद्र होगा, एक महान विश्वव्यापी धार्मिक केंद्र होगा, महाक्लेश में उसका पतन होगा और पशु के अनुयायी को दंड दिया जाएगा। यद्यपि मसीह यीशु के अपने अनेक जन महाक्लेश में शहीद होंगे, परंतु वह उनकी हार नहीं परंतु जीत होगी। मैं फिर एक बार कॉल्विन के साथ कहता हूं कि मैं आज भी इस बात को होना उचित मानता हूं, जो पराजित होते हैं या पराजित होते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु अंत में विजयी होंगे। अपेक्षा इसके कि आज जो समूह विजयी प्रतीत होता है उसके साथ रहूं, क्योंकि वह अनंत जीवन से वंचित हो जाएगा। मैं जीतने वाले पक्ष के साथ प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु अपने शहीदों को प्रतिफल देगा। मेरे मित्रों, अध्याय 19 में हम मेमने को पृथ्वी पर लौटता हुआ देखेंगे। सुबह होने वाली है, अंधकार दूर हो जाएगा और धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों में चंगाई लेकर उदय होगा। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे 144,000 के साथ मेमना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 144,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। लिखा है मैंने दृष्टि की। इससे स्पष्ट होता है कि यूहन्ना अब भी इन घटनाओं का दर्शक है। फिल्म की रील चल रही है और कहानी आगे बढ़ते ही जा रही है। कहता है मेमना, यह प्रभु यीशु मसीह है, जैसा हमने अध्याय 5-7 और अध्याय 12-13 में देखा है। यहां पर आगे कहता है सियोन पहाड़। जी हाँ, सियोन पहाड़ यरूशलेम में है, इसे कहीं और बताने की आवश्यकता नहीं है। इस पद में एक विनित पास्त्रीय दृश्य दिखाया गया है, जिसके साथ पृथ्वी पर हजार वर्षीय प्रभु राज का आरंभ होता है। प्रभु यीशु यरूशलेम से राज करेगा। जी हाँ, परमेश्वर ने स्वयं ही इसे महान राजा का नगर कहा है और भजन संहिता 2:6 में वह कहता भी है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। यह पिता परमेश्वर की इच्छा है कि वह प्रभु यीशु को यरूशलेम में दाऊद के सिंहासन पर बैठाए, विशेष करके सियोन पर्वत पर। आगे लिखा है 144,000। मेरे विचार में ये वे लोग हैं जिन पर अध्याय 7 में मुहर लगाई गई थी, जबकि मैं मानता हूं कि इस विचार में कुछ समस्याएं आती हैं। वे महाक्लेश से निकल कर आए थे, जैसे दानियल नबी के पुस्तक में हमने देखा है। दानियल के 3 इब्रानी साथी आग से निकल कर आए थे। ध्यान दीजिए कि उनके साथ सियोन पर्वत पर उनके साथ मेमना खड़ा है, वह चरवाहा भी है। स्मरण रखें कि उसने 144,000 के साथ आरंभ किया था और उन्हें महाक्लेश से लेकर आया है, उसने एक को भी नहीं खोया। मेरे मित्रों, आज शब्द शैतान का दबाव हमें पस्त कर देता है, तब हमारे लिए जीवित जयवंत मसीह यीशु उपलब्ध है। काश हम उसे अधिकाधिक जान पाते और वह हमारे जीवनों में दिन प्रतिदिन अधिकाधिक स्थान ग्रहण करना चाहता है और कर पाता। मैं अपने अनुभव से आश्वस्त हूं कि प्रभु यीशु व्यक्तिगत रूप से समाधान है। जब मैं लिखा हुआ देखता हूं यीशु समाधान है, तो मैं सोचता हूं कि समस्या क्या है, परंतु निश्चय ही वह उन सब समस्याओं का समाधान है जिनके लिए मनुष्य नाना प्रकार के कार्यकलापों द्वारा अपने ही प्रयास में लगा हुआ है। और वे कहते हैं, इन विधियों के द्वारा आप अपने व्यक्तिगत जीवन, परिवार, अपने कार्य और कलीसिया की सब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। परंतु इन सब के बाद भी मनुष्य जय के जीवन को प्राप्त नहीं कर पाता है, अनुभव नहीं कर पाता है। वास्तविक समस्या क्या है? हमें किसी विधि या कार्यकलाप की नहीं आवश्यकता, परंतु प्रभु यीशु की है। हमें उसे अर्थपूर्ण रूप में देखना है, हमें उसके अधिकाधिक निकट आना है। प्रसंगवश पिछली बार आपने प्रभु यीशु से कब कहा था कि आप उससे प्रेम करते हैं? वह आपसे कहता है कि वह आपसे प्रेम करता है, और आपको भी उससे कहना है कि आप उससे प्रेम करते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय 2-3 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 144,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। लिखा है, शब्द सुनाई दिया। यहोना यह दृश्य देख ही नहीं रहा है, परंतु वह सुन भी रहा था। 144,000 प्रभु राज में स्वर्गिक स्तुति गान गाते हैं। क्या आपने 144,000 की गायन मंडली की आवाज कभी सुनी है? अब तक तो पृथ्वी स्वर्ग के साथ सामंजस्य में नहीं थी, परंतु अब शैतान का राज समाप्त हो गया है और स्वर्ग और पृथ्वी फिर से सामंजस्य में है। ब्राउनिंग ने कहा था कि परमेश्वर स्वर्ग में है और पृथ्वी पर सब ठीक है। उसका कथन प्रभु के 1,000 वर्षीय राज में पूरा होगा। हम यहां पर पढ़ते हैं, जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। जब ये 144,000 पृथ्वी पर सियोन पर्वत पर खड़े हैं, तब परमेश्वर ने अपने वीणा बजाने वाले स्वर्ग में रखे हुए हैं, और यह दूरी स्वर्ग से बहुत दूर है। अपनी सेवा में मैंने अनेक वीणा बजाने वालों को देखा है, अर्थात व्यर्थ की बातें करने वालों को भी, परंतु स्वर्ग के ये वीणादायक बजाने वाले दल अति मधुर संगीत बजा रहे थे। हम आगे पढ़ते हैं, उन 144,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, अर्थात वे प्रभु राज में प्रवेश करने के लिए मोल लिए गए थे, वे स्वर्ग में उठाए नहीं गए हैं। यह प्रभु राज का दृश्य है और ये लोग पृथ्वी पर रहेंगे, उद्धार से रहित जन पृथ्वी पर नहीं होंगे। तब लिखा है कि उनको छोड़ करके कोई वह गीत ना सीख सकता था। उद्धार पाने वालों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जो परमेश्वर की स्तुति करे। काश यह सत्य आज के गायन अगुओं के समझ में आ जाए। मैं समझ सकता हूं कि उनकी मनोकामना है कि सब स्तुति करें, परंतु जब कलीसिया में उद्धार रहित मनुष्य हो, तब उन्हें सबसे आग्रह नहीं करना चाहिए कि वे मुक्ति का गीत गाएं। यदि उद्धार रहित मनुष्य आपके कहने पर मुक्ति का गीत गाए कि वह बचाया गया है, तो आप उसे झूठा बनाते हैं। अतः केवल उद्धार पाने वालों ही को स्तुति करने दें। भजन संहिता 107 उसके 1 और 2 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। मेरे मित्रों, केवल उद्धार प्राप्त मनुष्य ही कहेंगे कि यहोवा भला है। यही कारण है कि हमें कहना है यहोवा भला है। इस प्रभु राज में स्वर्ग और पृथ्वी अद्भुत एकता में लाए जाएंगे। यह अध्याय 13 के कैसे विपरीत है। जब पशु के राज में पृथ्वी स्वर्ग से विद्रोह कर रही थी, मेमने के राज में बड़ी शांति है। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय उसके 4 और 5 पद को। लिखा हुआ है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। लिखा है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। इसका अर्थ क्या है? यह तो मेरे लिए भी उलझन का विषय है। इसका अर्थ वास्तविक भी हो सकता है या आत्मिक भी हो सकता है। मेरे विचार में इसके दोनों अभिप्राय हो सकते हैं। महाक्लेश बेजोड़ कष्टों का समय होगा। 144,000 उस महाक्लेश में थे। असामान्य समय में असामान्य बातें होती हैं। यही उनके अविवाहित रहने का कारण था। मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आती है। एक युवा सैनिक मंगनी करके युद्ध में चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। लड़कियां कहती थी कि उन्होंने विवाह नहीं किया होता तो अच्छा था। महाक्लेश के समय ऐसा ही भयानक समय होगा और लोग कहेंगे कि विवाह ना करना ही अच्छा होगा। आपको स्मरण होगा कि भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह भी कष्ट के समय में था, जब बेबीलोन की सेना यहूदा वासियों को बंदी बनाकर ले गई थी, क्योंकि समय बहुत बुरा था। परमेश्वर ने उसे विवाह करने से मना किया था। हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक 16 अध्याय उसके 1-4 पद में पढ़ते हैं, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हों और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माएं, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। मेरे प्रियो, महाक्लेश में स्त्रियों के विषय प्रभु यीशु ने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 19 पद में, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। हमारे आज के युग में विवाह का एक सम्मान है, एक ऐसा प्रतीक है जो परिवार को जोड़ता है और विवाह करने का प्रोत्साहन भी दिया जाता है। तथापि नूह को दिया गया परमेश्वर का आदेश कि वह बढ़कर पृथ्वी को भर दे। आज की जनसंख्या वृद्धि और विश्वासियों द्वारा अंत समय की अपेक्षा के समय प्रासंगिक वचन नहीं है। महाक्लेश में यौनाचार का बहुत बल होगा और स्पष्ट है कि अनैतिकता सीमा पार कर जाएगी। ये 144,000 लोग महाक्लेश के पाप से स्वयं को अलग रखेंगे। अब आत्मिक परिप्रेक्ष्य में व्यभिचार को आत्मिक यौनाचार कहा गया है। यहेजकेल नबी की पुस्तक 16 अध्याय में परमेश्वर इसराइल को व्यभिचारी होने का दोष देता है, जिसका अर्थ है कि वे मूर्ति पूजा करते थे। ये 144,000 जन पशु और उसकी मूरत की पूजा नहीं करेंगे। यही कारण है कि यहोना कहता है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। इसका अर्थ दोनों अभिप्रायों में है कि उन्होंने स्त्रियों से संबंध नहीं रखा और पशु एवं उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की, जो आत्मिक व्यभिचार कहलाता है। आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए, यह तो निश्चय ही इसराइल का संदर्भ है। रोमियों के पत्री 11 अध्याय उसके 15-16 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा? जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। मेरे प्रियो, पहले फल इसराइली हैं, विशेष करके वे 144,000। मेरे विचार में प्रभु राज में इनका एक विशेष स्थान होगा। स्पष्ट है कि वे मेमने के आगे चलने वाला दल होगा जब वह अपना राज्य स्थापित करने आएगा। अध्याय 19 में हम इसी बात को देखेंगे। आगे देखते हैं, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, अर्थात उन्होंने पशु के चमत्कारी झूठ में सहभागिता नहीं की थी, वे उसके झूठ के भ्रम जाल में नहीं फंसे थे। स्मरण रखें कि प्रभु यीशु ने कहा था कि चुने हुओं को भ्रम में डालना संभव होता है, तो भी वे भ्रम में नहीं पड़ते। तब आगे है, वे निर्दोष हैं। क्या इसलिए कि वे महाक्लेश से बचकर निकल आए हैं? जी नहीं, वे निर्दोष हैं क्योंकि वे मसीह की धार्मिकता धारण किए हुए हैं। मेरे मित्रों, मेरा स्वर्ग जाना भी इसी आधार पर है। मैं इसलिए स्वर्ग नहीं जाऊंगा कि मैं अच्छा हूं। मुझ में तो कुछ भी अच्छी बात नहीं है, परंतु हम सब परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए पापी हैं, और यही कारण है कि अनुग्रह के द्वारा हम स्वर्ग में जाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता कि आप निर्दोष हैं, और मैं यह भी नहीं जानता कि आप स्वर्ग जाएंगे या नहीं, परंतु वे लोग जो प्रभु यीशु के लहू में धोए गए हैं, जिन्होंने उद्धार का अनुभव प्राप्त किया है, निश्चय ही वे स्वर्ग में जाएंगे। क्या आपने उद्धार का आनंद प्राप्त किया है? यदि नहीं, तो आज आपके पास अवसर है कि आप प्रभु यीशु के पास आए, उसे अपने जीवन में जगह दें, ताकि आप भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाएं। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
प्याला मेरा लबरेज कर, दिश नालबी को दूर कर, रूह को मेरी तू सैर कर, रूह को मेरी तू सैर कर, यीशु यीशु मसीह के नाम से मांगू दुआ, मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से सुनो इसे कबूल कर, सुनो इसे कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से दूर कर, रूह से मुझे भरपूर कर, रूह से मुझे भरपूर कर,